आज हम लोग भागवत के चौथा स्कंद 26वां अध्याय है ना 26वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8वां पढ़ रहे हैं, जिस अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यदः। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यदः। बोलिए। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो प्रज्ञो व्रजत्यदः। नहीं तो कर्म सकाम कर्म कुर्वाण करते हुए मान आरूढ़ अभिमान के वशीभूत होकर निबध्यते फंस जाता है गुण प्रवाह गुणों के प्रभाव से पतितः गिरा हुआ पतित नष्ट प्रज्ञः बुद्धि भ्रष्ट व्रजति जाता है अधः गर्त में नीचे। अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो इस अनुवाद में ही बहुत कुछ चीजें हैं, देखिए बता रहे हैं। अन्यथा, अन्यथा का मतलब है पूर्व श्लोक में बोला गया, नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से आगे कहा, हे राजा जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। उन्होंने बोला था इससे पहले, अभी क्या बोल रहे हैं, अन्यथा का मतलब क्या है, उसका मतलब है शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण नहीं करने वाला उसको क्या होता है, उसको क्या होता है, इधर बताया गया है। अन्यथा जो मनुष्य मनमाना करता है, मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाता है। मान लीजिए एक समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, लेकिन आपने एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया हो लहरों के ऊपर, तो हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर जाता है तो लहरों में आप लहरें आपको मारेंगे नहीं, पिटाई नहीं करेंगे हा? लेकिन अगर आपने हेलीकॉप्टर को पकड़ने के बदले हाथ छोड़ दिया क्या होगा, नीचे आएंगे तो लहरों में लकड़े हमको पटकेंगे, मारेंगे हमको, तो लकड़े किसके ला रहे हैं? जो पढ़ा हमने तीन गुणों के लहरें इस दुनिया में बड़े समुद्र जैसा है, इसको संसार सागर बोलते हैं ना। ये संसार सागर में तीन गुण जो है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है ना, ये तीन गुण के लहरें, बड़े बड़े लहरें उड़ते रहते हैं। अगर कोई पिटाई किया जाता है लहरों के द्वारा, उसको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है, बड़े तैराक भी क्यों ना हो है? वो भी समुद्र में डूब जाता है। तो इधर इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई शास्त्र के विधि विधान को पालन करता हो तो उसको शास्त्र ऊपर उठाते हैं हेलीकॉप्टर जैसे हाँ। लेकिन अगर कोई मनमाना कर्म करता हो, मिथ्याभिमान के वश में आकर, वो उसको नीचे गिर जाता हो व्यक्ति। नीचे गिरते में क्या होता है, प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाता है वो संसार समुद्र में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। उसको सद्बुद्धि निकल जाता है, कुबुद्धि आ जाता है उसको। बुद्धि में भी दो तरह की बुद्धि है, जो बुद्धि परमात्मा ईश्वर की बात सुनता है उसको सुबुद्धि बोलते हैं। तो वो सुबुद्धि वाला व्यक्ति ऊपर उठता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है धीरे धीरे, वो हर सब तरह के भक्तिमय कार्यों में जुड़ता है, भगवान का हरिनाम करना, शास्त्रों को मानना, भक्तों के संग में रहना, भगवान के दर्शन इत्यादि करना, वो माया से सावधान रहना, वो ऊपर उठता है। लेकिन जो जिसको कुबुद्धि आ गया, वो कुबुद्धि क्या करता है, मन की मांगे जो है ना उसको पूर्ति करने में, मन और इंद्रियों की मांगों को, खास करके दूषित मांगों को पूर्ति करने के लिए कुबुद्धि वाला क्या करता है, योजना बनाता है हमेशा, कुछ ऐसे योजना बनाता है जिससे खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, वो कुबुद्धि वाला है। इसलिए इधर बताते हैं कि इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है, उसको वास्तविक बुद्धि मतलब सुबुद्धि, उसे रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जैसे हम लोग एक बार एक ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं, विविध चीजें थी देखने के लिए, जैसे जुलूस में नहीं तो कुछ फेयर में जाते हैं ना, हम लोग गए थे ऐसे, तो उधर हमने देखा बड़ा व्हील था, एकदम बड़ा, सबसे बड़ा है, नीचे भूमि से आसमान तक व्हील, आपने देखा, जायंट व्हील बोलते हैं उसको, और उसमें सीट भी था बैठने के लिए, तो अनेक लोग बैठे थे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हमको भी इच्छा हो गई कि हमको भी बैठना है, कुछ उसमें भरना पड़ता है उसको, ₹5 ₹10 ऐसे, तो हमने बहुत हट किया। हमारे घर वाले ने बोला, देखो तुम छोटे हो, तुम डर जाओगे उधर बैठे तो, क्योंकि वो ऊपर जाते समय अच्छा लगता है, नीचे आते समय लगता है कि तुम गिर जाओगे, है ना, ऐसे आता है, सब चिल्लाते हैं ऐसे हैं। लेकिन हमने बहुत हट गया, हम तीन चार लोगों ने, ठीक है, उन्होंने पैसा भर के हमको ओवील में, वो जॉइंट व्हील में बिठा दिया। तो बैठकर हम लोगों ने सोचा कि हम आसमान में जाएंगे, ऊपर ऊपर से सारे शहर को देखेंगे, आइडिया तो अच्छा था है? लेकिन बैठने के बाद जब ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा था, हमको लगे अरे हमने गलती कर दिया है, इधर इधर हमने क्यों बैठा, हम तो शांति से खड़े थे नीचे है? ऐसे लगा, हम चिल्ला रहे थे, लेकिन वो तो मशीन ऑपरेटेड है, मशीन ऑन कर देते हैं, ऐसे गोल गोल वो 20-25 बार घूमता है, उसके बाद ही वो रुकता है। मैंने सोचा थोड़ा चिल्लाएंगे तो वो रोक देंगे, कोई रोकने वाला नहीं, वाहन करके सब लोग चिल्ला रहे थे उसमें है? अरे गलती कर दिया करके ऐसे पकड़ लिया ऐसे, क्योंकि लगा गिर जाएंगे हम ऐसे हाँ? तो हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर भी ऐसा है। स्वर्ग में जाते समय जीव को कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे हम स्वर्ग में जाएंगे, सोमरस पियेंगे हाँ? अप्सराओं के साथ नाचेंगे हाँ? और अच्छा अच्छा पदार्थ खाएंगे, नंदन नंदन गार्डन में जाकर आराम करेंगे हाँ? सब अच्छा लगता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या करना होता है, नीचे भी जाना होता है। जब नीचे आता है जीव उधर नरक में देखता है कि कोई किसी जीव को एक बड़े इसमें डालकर क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई में डालकर पूरी बना रहा है, पकौड़ा बना रहा है, हाँ इधर हमको गिरना नहीं था हा? तो उस तरह विभिन्न तरह की यातनाओं को दिया जाता है। तो आप देखेंगे इस भौतिक दुनिया में कबू राजा कबू प्रजा, कबू स्वर्ग कबू नरक ऐसे बोलते हैं हा? तो यही बता रहे हैं इधर महत्वपूर्ण श्लोक है। वो बता रहे हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, जीव जो मनमानी करने के कारण वो तीन गुणों में फंस जाता, तीन गुणों के लहरों में फंस जाता है, वो जन्म मृत्यु के जॉइंट वेल में फंस जाता है, वो जॉइंट वेल रुकता नहीं है, जाता रहता है। जब तक आप भगवान के भक्तों के साथ संपर्क में नहीं आओगे, उस समय तक वो तो व्हील चलता रहेगा और आपको डर पैदा करता रहेगा वो। कभी सुख सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, जय पराजय, लाभ अलाभ, ये तो पैदा होते ही जाएंगे। ऐसे सदा सदा बोल रहे हैं, सदा सदा के लिए पता नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म हमें काटना पड़ता है ऐसे। इस तरह मल में जीने जीने वाले एक एक शूद्र शूद्र ये होता कीड़ा होता है, उधर से लेकर ब्रह्मा तक जीव को विविध तरह के शरीर प्राप्त होते हैं। अलग अलग शरीर में प्रवेश करके जीव अलग अलग तरह के विविध भोग, जो विविध तरह के भौतिक भोग करने में लगा रहता है जीव। ऐसे अनुवाद है, ठीक है। थोड़ा तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य देखिए, चार पेज का तात्पर्य है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, ये दो दो तीन पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। इस श्लोक में कई शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है अन्यथा, नहीं तो, जो उसकी ओर संकेत करता है, जिसे वैदिक विधि विधानों की परवाह नहीं रहती। वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को स्वीकार नहीं करता है और मनमाना कार्य करता है, अन्यथा मिथ्या गर्व से फूला रहता है, उसे इस जीवन में ना तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है और ना सुख अथवा भौतिकता से मुक्ति ही ना सुख और भौतिकता से मुक्ति मिलती है। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख अथवा परम धाम। गीता में भगवान 16 अध्याय के लास्ट श्लोक में बताते हैं। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, वह अपने ही कारण से प्रकृति के गुणों द्वारा उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिनका सार भगवद गीता में उपलब्ध है, अन्यथा भौतिक संसार में ही जीवन बिताना होगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। क्रमिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है, तो उससे आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि अनादिकाल से जीव अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति जन्य त्रयतापों को सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना है। अभी तक एक महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है, इधर क्या है? वैदिक विधि विधानों को जो पालन नहीं करता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को ये जन्म मृत्यु का चक्कर रुकता नहीं, वो तो जारी रहता है। लेकिन एक समय ये जो जॉइंट व्हील मैंने बोला आपको, वो रुकता है। कब? आपको जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तभी वो आपको पूछेंगे, वो लोग, ये व्हील से बाहर आना है क्या? ऐसे पूछेंगे आपको, आप क्या बोलेंगे? आना ही आना है, अरे इतना देर तक 25 बार घुमाया हमको, है अभी छोड़ो हमको। अगर उस समय आप थोड़ा वीडियो गेम खेलने में मस्त हो गए हैं, आपने बाहर निकला नहीं, और 25 बार घूमेगा वो, समझा ना? आपने बीच बीच में रुकता है, किस समय रुकता है? जब मानव शरीर प्राप्त होता है, उधर आपको उतरने की मौका है जॉइंट व्हील से नीचे। अगर आप डर गए बहुत, तो उस समय उतर जाना चाहिए, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए उतरने के लिए। अरे बहुत हो गया, अभी घूम घूम कर चक्कर आ रहा है हमको, है? तो इस तरह अगर हम सोचते हैं कि हमको चक्कर नहीं चाहिए, उतरना है, तो वो सही टाइम पर उतरना चाहिए। और उतरने के लिए क्या शरीर दिया जाता है हमको? मानव शरीर, क्योंकि मानव शरीर में सुबुद्धि प्राप्त कर सकते हैं हम, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान के दिए हुए शास्त्र इनको पढ़कर सद्बुद्धि को हम जगा सकते हैं। जगाने से क्या होगा, हम ये चक्कर जो है जन्म मृत्यु का चक्कर, संसार के सागर के लहरें, उनसे ऊपर उठ जाएंगे और हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे इस दुनिया से, भगवत धाम लौट जाएंगे, वापस आने की जरूरत नहीं। लेकिन मूर्ख लोग जो समझते नहीं हैं उनको आना पड़ेगा इधर, क्योंकि वो लोग जब मनुष्य जीवन मिलता है तब भी उसका दुष्प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सुना एक व्यक्ति था, वो कुछ तो चोर लोगों ने उसको बहुत बड़े किला के अंदर उसको रख दिया, अंदर बहुत बड़ा आग था, अंदर बहुत गर्मी था, उसको बाहर निकलने की इच्छा थी, अंदर भी था, बीच में आग, चारों ओर किला है, तो किला के दीवार को पकड़ पकड़ जाता था, एकदम आग उसके निकट आता था तो उसको डर था कि हमको जला देगा ये आग, तो इसलिए दीवार को ऐसे पकड़ पकड़ कर आता था, ऐसे पकड़ कर अंधा था ना वो, ऐसे पकड़ कर आते समय स्पर्श करता था वो दरवाजा बंद था, एक दरवाजा, ठीक है इसको छोड़ दो अभी अगले दरवाजा देखते हैं, उधर जाता था वो भी बंद था, ऐसे ऐसे एक एक करके सब बंद था, वो रो रहा था, वो कह रहे सब दरवाजा बंद तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा, ये तो जला रहा है मुझे, तो एक दरवाजा खुला था, लेकिन वो दरवाजा आते समय इसने क्या खुज लिया गया उसको, थोड़ा तो खुजली किया, ऐसे खुजली करते करते आगे चले गया वो वापिस दीवार ऐसे, और वापिस सब दरवाजा बंद थे। तो इसका ये उदाहरण क्यों दिया जाता है मालूम है आपको, 84 लाख योनियों में एक योनि है जो जिधर दरवाजा खुला है वो क्या योनि है, मनुष्य योनि। लेकिन मनुष्य योनि में जो खुजली का मतलब है मैथुन जीवन के आकर्षण, अगर उसमें कोई फंस जाता है उसके कारण इस दुनिया में वो रह जाता है और भगवत संबंधित चीजों में वो लग नहीं पाता है, तो उसमें खुजली आ जाता है, तो उसको मनुष्य जीवन में भी वो दरवाजा खुला है, खुला पड़ा है लेकिन जाता नहीं वो, लेकिन आगे सब बंद पड़े हैं दरवाजा, वो क्या है, जानवर का, जलचर का, पंछी का, विविध तरह के प्राणियों का, उधर से कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर को सुबुद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग नहीं है। अगर एक गधे को एक भगवद गीता भी दो वो फाड़ फाड़ कर पेपर को काता रहेगा वो, है ना, वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा क्या, वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा अच्छा खाने के लिए मिल गया बस। तो मनुष्य जीवन में हम लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं। अमेरिका में एक रोजर नाम का एक लड़का था, वो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद के क्लास में आता था, वो तो उसके मन में एक विचार चल रहा था कि स्वामी जी क्यों हमेशा कुत्ते बिल्लियों को बाहर ही बांध दो, अंदर आने मत दो, ऐसे बोलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा उनको। वो सोच रहा था कि मैं एक दो क्लास अटेंड करूंगा उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आऊंगा नहीं इधर। उनकी बीवी जो थी उनको बहुत रुचि था गीता क्लास में, वो अटेंड करते थे। वो उस दिन आकर बैठा वो कमरे के बाहर, एक ऐसे खम्भा को खड़ा किया गया था, उसमें सब पेट पेट डॉग जो लेके आते थे ना उनको बांधते थे उधर। तो प्रभुपाद जी आते समय वो सब कुत्ते दरवाजे के सामने बैठे थे, तो प्रभुपाद जी एक अपने हाथ में लाठी लेकर ऐसा करते थे तो हट जाते थे वो, हैं अंदर आ गए प्रभुपाद जी। उस दिन अंदर आते ही प्रभुपाद ने क्लास में बोला, कृष्ण भवनामृत संघ कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, ऐसे बोला उन्होंने, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे हम जो बोल रहे हैं, इसलिए उनको बाहर रखा है, आप लोगों को अंदर रखा है, क्योंकि वो जो है वो समझ नहीं पाएंगे, अगर क्लास में उनको बिठाएंगे भी समझ नहीं पाएंगे, इस तरह बोले प्रभुपाद जी। इससे पता क्या चलता है, उनको तुरंत पता चल गया, किसको, रोजर को, समझ गया कि देखो इस दुनिया में मनुष्य जीवन एकमात्र जीवन है जो श्रवण के द्वारा हम भगवत चिंतन को जगा सकते हैं, और एक बार आपने श्रवण करके थोड़ा रुचि जगा दिया तो बार बार सुनने की इच्छा होता है, और बार बार सुनने से चित्त मल से मुक्त हो जाता है, और इस तरह धीरे 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 सद्बुद्धि आ जाता है। देखिए हमारे मन जो है इसके दो दिशाएं हम देख सकते हैं मन की, एक दिशा है हमें नरक में लेके जाना क्या आदत है, दूसरी दिशा मन की ऊपर उठाने का। तो हम लोगों ने एक नाटक एक ड्रामा की थी विद्यार्थियों का, उसमें ये मन की स्वभाव को हमने प्रकट कराया। उसमें क्या करता है मन, दूषित अवस्था में मन आपको खींचता है गलत दिशा में, जैसे एक लड़का ज्वाइन करता है कॉलेज में नया नया, लेकिन एकदम बोला बोला होता है वो, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करके विद्यार्थी उसको बिगाड़ देते हैं, उसको सिगरेट चिका देते हैं, शराब चिका देते हैं, सिनेमा मैगजीन देते हैं, वो सब पढ़ता है, सिनेमा लेके जाते हैं, पूरा बिगड़ जाता है वो, और इतने में परीक्षा आ जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, वो देखता है उसका मार्क किधर, एकदम नीचे है उसका, 20% 30% ऐसा निकला मार्क, तो माँ बाप फोन में डांटते हैं उसको, अरे बेटा इतना पैसा भेजते हैं तुम बिगड़ गया कॉलेज में जा कर, है वो चिल्लाते हैं, तो रो रहा है। अभी अगले साल भी ऐसे ही हुआ, मित्र लोग आकर इसको पार्टी में खींच कर लेके जाते हैं, और जाना नहीं चाहता फिर भी वो खींच कर लेके जाते हैं उसको, वो भी चला जाता है। लेकिन एक एक दिन की बात है कि वो जब मित्रों के साथ बैठा रहता है, तब एक हरे कृष्ण भक्त आते हैं, ये किताब लेकर, हाँ ये भगवद गीता लेकर आते हैं, जय श्री राधा कुंज बिहारी की जय। तब सब मित्र उनकी मजाक उड़ाते हैं, किसकी, भक्तों की, हाँ बोलते हैं अरे देखो ये टकला, देखो ये शेंडी, देखो ये पंडित जी, देखो ऐसे है। लेकिन इसको, ये तो अच्छा परिवार में जन्मा है ना, तो इसको आदर है, उनको उनको पूछता है कि आपको कैसे मदद करूं, वो लोग बोलते हैं कुछ मदद नहीं चाहिए, सिर्फ एक किताब ले लो है बस। तो इसके फ्रेंड्स बोलते हैं किताब मत लो, ये क्या पढ़कर, ये साधु साधु लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन उसके उसको इच्छा होता है कि हमारे माता पिता पढ़ते थे गीता, हमको भी पढ़ना है, हो सकता है गीता में कुछ ऐसा विषय है जो हमको चिंता मुक्त करेगा है? ऐसे पूछता है क्या चिंता मुक्त हो सकते हैं क्या गीता पढ़कर। तुरंत वो भक्त बताते हैं चंचलमी मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रम, कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था ना मन बड़ा चंचल है मुक्त कैसे होना है, तो बताते हैं अच्छा गीता से हमको लाभ हो सकता है क्या, ठीक है गीता ले लेता है वो है? तो उसके बाद अपने कमरे में जाकर पढ़ना चालू है उसका, धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ते समय उसकी सद्बुद्धि जग जाता है, तो उस समय उसके पुराने आदतें याद आते हैं उसको है? तो शराब पीना, सिगरेट फूंकना, सिनेमा जाना, पढ़ाई ना करना, लेकिन वो आदतें आते समय वही मन जो पहले दूषित था अभी मन निर्मल हो जाता है उसका है? मन ही उसको बोलता है अरे बदमाश ये सब खराब चीज है, उसको छूना नहीं, छोड़ दो तुम है? अभी तुम तो भक्त लोग उसको देते हैं माला, देते हैं माला, करता है माला, करते 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 माया से ऊपर उठ जाता है। एक भक्त बता देते हैं माला करना माया को गोली मार सकते हैं, माला करके, गोली क्या है, ये गोली है, ये गोली है, ये पिस्तौल है, मार सकते हैं ऐसे 108 गिनने का है, ऐसे गिन गिन कर माया को गोली मार सकते हैं आसानी से, ऐसे बता रहे थे। तो ये माला करके माया से ऊपर उठ जाता है वो है? और अभी माया उसको फंसा नहीं पाती है, क्योंकि जो माला अच्छी तरह करते हैं ध्यान पूर्वक, वो भगवान को निस्सहाय भावना से भगवान का आश्रय लेते हैं, हे भगवान मैं बदमाश हूँ, मैं पापी हूँ, पतित हूँ, आपके आश्रय दीजिए, बचाइए, ऊपर उठाइए है। तो भगवान का आश्रय, मामेवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, माया से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति है। हालांकि माया बहुत कठिन है ऊपर उठने के लिए, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर कोई ऊपर उठ सकता है, ऐसे है उठ जाता है। उसके बाद वही दूषित मन पहले इनको नरक में लेके जा रहा था पहले, अभी वही मन निर्मल हो गया, अब इनको ऊपर उठाता है, मन ही खुद बोलता है इसको, हे ये मैगजीन को छूना मत, सिनेमा मैगजीन को, ये शराब को छूना मत, सिगरेट को छूना मत, वो बदमाश लोग हैं उनके साथ संग मत करना है, ये भक्तों के साथ संग करो है। ऐसे जितना हमारा मन निर्मल होता है उतना हम सही दिशा में जाते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट हम सबके जीवन में आना चाहिए। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे जीवन में तो आ ही गया ना, हम तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, जपमाला भी हमारे पास, धोती कुर्ता साड़ी पहनते हैं, और क्या हम तो भक्त बन गए ना। नहीं, भक्त बनने के बाद भी माया छोड़ते नहीं है। वो ड्रामा में और भी दिखाते हैं, माला कर रहा है अभी, करते करते सो जाता है, माया बोलती है हाँ अभी तुमको सुला दिया बेटा तुमको है, अभी मैं चढ़ जाऊंगी तुम्हारे सर के ऊपर है, तो माया चढ़ जाती है, वापस वापस पुराने आदतें रिटर्न आती हैं उसके कारण है। इसलिए हम लोग जानना चाहिए कि भक्त बनने के बाद भी तमोगुण में हम सो जाते हैं और रजोगुण में मन विचलित होता है, नाम को सुन नहीं पाते हैं, इसके कारण क्या होता है वापस माया के प्रलोभन ने हमको आकर्षित दिखते हैं है? इसलिए जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होकर सात्विक आहार खाना, सात्विक आदतों को हासिल करना, जैसे जैसे गाय की पूजा करते हैं, दूध पीते हैं, शाकाहारी भोजन, भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाते हैं, मंदिर में आना, भगवान के सामने झुकना, भक्तों की संग करना, आदर के साथ भक्तों के साथ व्यवहार करना, और काम क्रोध लोभ इत्यादि से मिलित कार्यों को छोड़ देना, तो इस तरह हम लोग धीरे 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 ऊपर उठ जाएंगे। मन को कैसे संभालना, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे इधर बताया जा रहा है कि शास्त्र को जो पालन नहीं करता उसको दंड है, वो तीन गुण उसको सताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर ऐसे, मान लीजिए आपको कॉलेज जाने का एक लंबा रूट है 4 किलोमीटर का, उसमें ही आप जाते हो, सब लोग जाते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट रूट भी है जो 1 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे। समस्या एक ही है कि उस शॉर्टकट रूट में एक बड़ा कुत्ता बैठा है एक घर के बाहर, हमेशा बैठा रहता है, लेकिन कभी कभी सो भी जाता है वो, तो आपको लगता है कि वो तो सो रहा है ना, डिस्टर्ब हमको नहीं करेगा, तो आप धीरे से जाते हैं। लेकिन अगर वो जग गया तो आपके पीछे भागता है, आप भी भागो वो भागेगा, अनेक विद्यार्थियों को काटा हो, तो कितने लोग वो 1 किलोमीटर वाले रूट में जाएंगे आप, क्योंकि आपको समय बच जाएगा ना, आपको जाएंगे क्या। इस तरह अनेक लोग दुनिया में शॉर्टकट लेना चाहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, तो लॉन्ग कट क्या है, शास्त्र के विधि विधानों को पालन करो, उधर किसी भी तरह का खतरा नहीं है शास्त्रों को पालन करने में। पालन करने में थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा तपस्या करना हो सकता है। देखिए भी रावण की धर्मपत्नी थी मंडोदरी, पतिव्रता नारी थी, उसको छोड़कर ये सीता के चक्र में पड़ा है रावण, आप देखेंगे तो सुख भोगने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा है और कुछ है। इस तरह आप देखेंगे जो इस दुनिया में शास्त्र के विधि विधान को तोड़ते हैं, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो पतित हो जाते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं, विविध तरह के समस्याओं को झेलना पड़ता है उनको, ऐसे। तो आगे जाकर अभी प्रभुपाद जी बताने वाले हैं कि पाप कर्मों को करते समय जीव को लगता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ, लेकिन वो सुख कितना मूर्खता है वो बताएंगे प्रभुपाद जी अभी आगे। भगवद गीता में इसकी पुष्टि है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश के रूप में हैं, बद्ध जीवन के कारण उन्हें मन समेत अपने चह इंद्रियों से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे भगवान बताते हैं। देखिए इंद्रियों के साथ क्या संघर्ष है, इंद्रियों का आदत है पकड़ना, किसको पकड़ना, जैसे बच्चा है एक चाकू को पकड़ लेता है, उसको चाकू को लेकर ऐसे करता है, नहीं तो मुंह में डालता है चाकू लेकर, नहीं तो आग को छूता है बच्चा, नहीं तो गर्भ से बाहर भागना चाहता है माता पिता को छोड़कर, उसको फ्रीडम चाहिए उसको। हमने एक कहानी सुना हमारे स्कूल के दिनों में, दो भाई बहन थे, हैंसल और ग्रेटल बोलते हैं उनको, हैंसल ग्रेटल, भाई और बहन। एक दिन भाई बहन बैठकर बात कर रहे थे कि देखो हमारे माँ बाप जो है ना हमको बहुत सताते हैं, पढ़ो 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 हमेशा स्कूल की पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, दिन भर खेलना चाहते हैं, खेलना नहीं छोड़ते, 1 घंटा खेलने के लिए छोड़ते हैं, अभी कान पकड़ कर हमको लाते हैं पढ़ने के लिए, अगर हम लोग जंगल चले जाएंगे ना एकदम स्वतंत्र मिल जाएगा हमको, हम तो मजे में रहेंगे हमेशा के लिए, दिन भर खेलेंगे हम। भाई बहन दोनों ने ऐसे अपने आपस में बात कर लिया, तो रात को 11 बजे सब माँ बाप सो रहे थे, ये भाई बहन उठ गए, तो घर छोड़कर निकल गए रातों रात। तो जंगल जाते समय, जंगल तो अंधेरा होता है जंगल में, थोड़ा बहुत आसमान में चंद्रमा है इसलिए राह दिखाई दिया उनको जाते समय, तब उनको आवाज़ सुनाई दिया शेर का, बाघ का, हाथी का, थोड़ा डर भी पैदा हुआ। तो बहन डरने लगी, हैंसन ने बोला चिंता मत करो, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं देखकर बताता हूँ, कुछ किसी का घर हो तो हम घर में चले जाएंगे, अंदर आराम कर सकते हैं। तो पेड़ के ऊपर जाकर देखता है तो ये एक झोपड़ी था, लेकिन आश्चर्य की बात क्या थी, वो झोपड़ी पूरा केक से बनाया हुआ था और ऊपर क्रीम था और चेरी भी था, केक के ऊपर क्रीम होता है ना, कलर कलर क्रीम होता है, देखा आपने, क्रीम भी है उसके ऊपर चेरी भी रखा, पूरा झोपड़ी का जो छत है किससे बनाया है, केक का बनाया हुआ है। तो नीचे उतर कर बोला बहन को, आ जाओ इधर ही है, कुछ ही दूर में एक सुंदर झोपड़ी है, घर पूरा केक से बनाया हुआ है, हम लोग केक पसंद करते हैं, घर में तो 1-2 देते हैं, इधर तो पूरा घर ही बनाया है केक से, चले जाऊंगा। तो दोनों छाती के ऊपर चढ़ गए, बैठ कर खाने लगे, केक भी खाने लगे और चेरी भी खाने लगे, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि सही निर्णय लिया हमने जंगल आने के लिए, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे खाते खाते देखा थोड़ा खाली हो जाता है ना थोड़ा खाने से, जो ऐसे छिद्र हो गया, उधर से देखा अंदर एक चुड़ैल थी, चुड़ैल मालूम है, चुड़ैल विच, वो एक क्या बोलते हैं, पतेला बोलते, पतेला नहीं है, कढ़ाई, कढ़ाई, एक कढ़ाई में गरम गरमा गरम तेल, धुआं निकल रहा था वो तेल से, वो बना रही थी वो, किस लिए? उसको मालूम था चुड़ैल को ये दो बच्चे आए हैं, उनको रोस्ट करके खाने के लिए हैं, वो बना रही थी हैं। तो दोनों ने ऊपर से देखा, वो चुड़ैल को देखा, क्योंकि चुड़ैल सुंदर नहीं दिखती, वो तो बुढ़ी होती है, सफेद बाल होता है, चेहरा देखने बहुत क्रूर दिखता है। तब उन्होंने देखा तो अचानक चुड़ैल उनकी ओर देखा, ही, क्या उसने, बच्चे आ जाओ, सही स्थान पर आए हो, अभी कुकिंग करेंगे तुम दोनों का, आओ इधर नीचे उतर आओ, बोला। दोनों भाई बहन नीचे उतर कर भाग गए अपने घर की ओर, भागते हुए गए। बोला कि अरे बाप रे बाप, हमको रोस्ट करके खा लेगी, हम सोच रहे हैं कि हम केक खा रहे हैं, लेकिन ये हमको खाएगी, ऐसे समझ कर भाग गए दोनों घर, वापस भाग गए। माता पिता को अपने एक्सपीरियंस बोल दिया क्या हुआ जंगल में है? तो इस एक कथा में माता पिता कौन है? हमारे राधा कृष्ण है, माता पिता है। हम कौन है? ये बच्चे हैं। हम क्या सोचते हैं? भगवान की सेवा करना, हमको लगता है कि आलसीपन होता है, क्या है सेवा करना है, ये मत करो वो मत करो, हमको बुरा लगता है। तो हम भगवत धाम छोड़कर इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया वो जंगल के बराबर है। वो जंगल में जो केक मिल रहा है, जो वो क्या है कोई बता सकते हैं? फ्री में जो मिलता है इंद्रिय भोग है, लेकिन इंद्रिय भोग आपको मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए बड़ा दाम भरना पड़ता है। वो दाम क्या है? वो चुड़ैल आपको रोस्ट करेगी। वो चुड़ैल कौन है? माया देवी है। और वो जो कढ़ाई में फ्राई कर रहे हो, कढ़ाई क्या है? तीन गुण है, तीन गुणों में डालकर जीवों को फ्राई करके खाती है माया देवी। हम सोचते हैं कि माया को हम भोगेंगे, लेकिन माया हमको जैसे पुलिस लोग बेल्ट निकाल कर मारते हैं ना, ऐसे मारा जाता है जीव ऐसे। तो माया देवी की यातनाएं खा खा कर, जन्म जन्म काट कर, अंत में हम सद्बुद्धि आ जाता है। हम सोचते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी जो बोलने वाले लोग हैं बहुत हो गया, वो बुद्धिमान लोग हैं, थक गए अभी माया के खेल में हैं, थक कर वो भाग जाते हैं अपने भगवान के पास, वापस लौट जाते हैं। इसे वही अभी बताने वाले हैं प्रभुपाद जी, देखिए आगे बताते हैं। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, अतः उसे ही संसार के त्रयतापों में डाले जाने का कोई कारण नहीं है, किंतु जीव अपने को झूठ ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसे इस भयावह स्थिति से बचाने के लिए ही भगवान ने व्यास देव का अवतार लेकर सारा वैदिक साहित्य प्रदान किया है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। श्री कृष्ण को बुलने के कारण जीव अनादि काल से भौतिकवादी बन गया है, अतः श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। माया मुग्ध जीवर नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जब जीव माया द्वारा मुग्ध कर लिया जाता है तो उसकी कृष्ण चेतना पुनरुज्जीवित नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने कृपा करके 4 वेद तथा 18 पुराण प्रदान किए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह मनमाने कार्य करेगा और बिना किसी मार्गदर्शक के रह जाएगा। इस श्लोक में मानारूढ़ शब्द भी महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने विश्वभर के लोग मानसिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः अभक्त होते हैं, क्योंकि वे प्रथम जीव ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। इसलिए भागवत का कथन है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति दावतो बहिर्। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, अभक्त है, वह भौतिक स्तर पर कार्य करने के कारण सुपात्र नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का मानक बदलना पड़ता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक दार्शनिक दूसरे से सहमत नहीं होता और ऐसे वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सर्वथा विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करने करते करते रहना है। किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृत है, भले ही कभी कभी कथन पर परस्पर विरोधी लगे। चूंकि वेद ज्ञान के मानक हैं, अतः भले वे विरोधी लगे किंतु उन्हें मानना चाहिए। यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर भावबंधन में पड़े रहना होता है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए ये जो वेद बताते हैं कि अगर आपने सड़क में चलते समय एक किसी ने विष्टा किया है, विष्टा के ऊपर आपका पांव पड़ गया है, नहीं तो कुछ हड्डी पड़ा है उसके ऊपर आपने पांव रख दिया, तुरंत घर आकर आपको क्या करना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि वो एकदम दूषित वस्तु माना जाता है उसको। लेकिन वो ही वेद बताते हैं कि गाय का जो शेन है, गाय का गोबर है, वो बहुत पवित्र माना गया वेदों में। गाय के गोबर को लेकर लोग ये बनाते हैं, केक बनाते हैं, और घर में भी उसको लेपन करते हैं उसको, है? वो गंदा चीज नहीं माना जाता है, वो पवित्र माना गया है। तो आप पूछेंगे क्या है प्रभु जी, वेद में एक 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 और बताया गया है कि विष्टा दूषित चीज है, इधर बताया गया है कि गाय के गोबर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तक कि गोमूत्र को भी पीते हैं दवाई के रूप में। तो वेद जो बोलते हैं हमेशा सत्य बोलते हैं वेद। तो आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ निकाला है कि गाय के जो गोबर है उससे उसमें अनेक हमारे मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक पदार्थ हैं उसमें, वो लोगों ने ढूंढ निकाला है। तो इस तरह आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग बेवकूफ़ी के कारण अनेक बार गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने देखा कि पेड़ कड़ा है इसलिए वो मृत है, वो जिंदा नहीं है, ऐसे बोले वैज्ञानिक लोग, हजारों लोग हजारों साल बोलते आए हैं। अभी कुछ 50-60 साल के पहले एक वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाला कि पेड़ पौधे भी जिंदा है, दे भी जिंदे हैं। लेकिन हमारे वेद पुराण में आप देखेंगे हमेशा चर अचर बोलते हैं। चर का मतलब है चरने वाले प्राणी, जैसे हम लोग और जानवर भी है। अचर कौन है, पेड़ पौधे हैं, दोनों जीवित हैं, दोनों में जान है, ये तो करोड़ों साल के पहले वेद पुराण बोलते हैं। इसलिए हमें वैदिक संस्कृत वैदिक बात को मानना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं हम। हालांकि कभी कभी वेद लगता है हमको कि एक विरुद्ध चीज बोल रहे हैं, लेकिन वेद जानते हैं कि वो कैसे सही है। शायद हम लोग ढूंढ निकाले कि ये गोबर में कुछ अच्छाई है अच्छाई नहीं है, अगर हमको मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन वेद जो बोलते हैं वो सही बात है, यही बताया जा रहा है इधर, है। इसलिए हमें वेदों को मानना चाहिए। और इसके एकदम विरुद्ध आधुनिक इंसान क्या करता है, मनमानी करता है। हम उदाहरण बता सकते हैं मनमानी क्या है। देखिए मनुष्य को लगता है अगर मेरे पास 20 इच्छा हो, है? तो मैं धीरे धीरे, मेरा उम्र भी 20 है, इच्छा भी 20 इच्छाएं हैं, तो हम एक एक करके पूर्ति करते जाएंगे। जब हमारा 50-60-70 हो जाएगा, सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और भजन करके निकल जाऊंगा भगवत धाम के लिए। ऐसे लोग सोचते हैं, एकदम लॉजिकल दिखता है ना ये, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करो, इच्छा मल्टीप्लाई होते हैं। व्हाट इज ए मल्टीप्लाई इन हिंदी, दुगुना, बहुत गुना बढ़ जाते हैं, गुना बोलते हैं, बहुत गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपको 18 वयस में आपके पास जो इच्छाएं हैं, 80 होने के बाद भी वही इच्छाएं हैं, कभी कभी 80 होने के बाद और भी इच्छा बढ़ जाते हैं, आप देख सकते हैं कम नहीं होते। आप पूछ सकते हैं, प्रभु जी को पूछ सकते हैं, प्रभु जी का उम्र कितना, 70 है आपका, या 60 या 70, 73। ऐसे लोगों को प्राइवेटली मिलकर आप पूछिए, प्रभु जी जो वयस बढ़ता है 18 से लेकर 80 तक बढ़ता है, क्या इच्छा घटता है क्या, ये भक्त बन गए बच गए। अगर कोई भक्त नहीं बना, इच्छा क्या घटता है क्या, घटता कभी नहीं है। ऐसे एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का कहानी बताते हैं प्रभुपाद जी। तो चंद्रगुप्त को विश्वास नहीं बैठा कि कोई बूढ़ा होने के बाद उसको वासनाएं अभी भी रहते हैं, वो बूढ़ा होने के बाद भी। चंद्रगुप्त बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाणक्य ने उनको लेकर एक बूढ़े के पास लेके गया, तो बूढ़ा इतना बूढ़ा था, 90 साल का था, वो लेटा था, उसके हड्डी सब दिख रहे थे, शरीर में कुछ मांस ही नहीं था उसका, ऐसे लेटा था, आंख भी खोल नहीं पाया, वो तो मृत्युशैया में था वो। तब उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे को बुलाओ, बेटे को लेकर आया चंद्रगुप्त, उसका आवाज छल 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 छल, वो आवाज सुनते ही इसका आंख खुल गया है, ऐसा आंख खोल कर उसको देख रहा है। निकट कड़ा है राजा, राजा को नहीं देखता हा? और निकट कड़ा है चाणक्य, उसको भी देखता नहीं। और वो जब चली गई उसी दिशा में देखा, वो चलने के बाद वापिस हो गया वो है? तब वो बोलते हैं देखो 90 होने के बाद भी वासनाएं घटते नहीं। हाँ अगर हम उन वासनाओं का आकार देने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये किसके बराबर है? एक आग में पेट्रोल डालने के बराबर है, जितना हम पेट्रोल डालेंगे उतना उसका वर्धन होगा। दुष्पूरेणा अनलेन च। इसलिए बताते हैं कि अगर कोई भगवान के दिए हुए ग्रंथों को पढ़ता नहीं कोई व्यक्ति, वो एकदम बेवकूफ हो जाता है। वह अपने इच्छाओं की पूर्ति के पीछे पड़ता है, इधर भागता उधर भागता, पैसा अर्जित करता है, वासनाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, तंग आ जाता है, फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी छोड़ नहीं पाता है, वापिस उन्हीं चीजों को करता है। इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जैसे एक बार अगर शुगर केन दुकान में आप देखेंगे, ये मशीन होता है ना, कड़कड़कड़कड़ मशीन जाता है, बीच में शुगर केन डालो, वो लोग बार बार डालते हैं उसको अंदर, देखा आपने? उनका सोचना क्या है, थोड़ा जो भी रस रहेगा उसको पैसा बनाएंगे उससे। इस तरह एक बार अगर निकाल दिया आपने जूस, उसमें क्या है उसमें, फिर भी वो बार बार करते हैं इसे। इस तरह इंसान भी क्या करता है, जीव क्या करता है इस दुनिया में, हर एक बार ट्राई करता हूँ भोग करने के लिए, तो खाना हो पीना हो मैथुन हो जो भी हो, वो बार बार ट्राई करता है। लेकिन हमारे इंद्रिय जो है बूढ़े होने के बाद इंद्रिय सूख जाते हैं, कोई खा नहीं पाएगा 50-60 होने के बाद, जो ऐश्वर्यशाली भोजन खा नहीं पाएगा। पहले आप खाते थे चार पाँच पूरण पोली, कोई 50 से ऊपर किसी को पूछो क्या 5 पूरण पोली खा पाओगे, वो आधा खाएगा। वो अंदर रखते हैं उसको, क्या बोलते हैं पूरण पोली के अंदर रखते हैं, पूरण है ना, पूरण पचेगा नहीं वो खाएगा। तो आप देखेंगे कि युवक अवस्था में जो खा सकते थे आप पहले, 60-70 होने के बाद खा नहीं पाओगे। मतलब क्या है, अभी वायस बढ़ गया, शरीर का यंत्र जो है वो ढीला हो गया। अभी जैसे हमारे सुमो 8 साल के बाद सुमो एकदम ढीला गाड़ी बन गया, गड़गड़ स्टेरिंग को पकड़ो गड़गड़ ऐसा होता है, ऐसा हमारा शरीर भी गड़गड़ हो जाता है, और गड़गड़ भी हो जाता है गिड़गिड़ता है, देखा आपने? तो लेकिन इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं हुए है बूढ़े होने के बाद, इच्छा है लेकिन यंत्र साथ नहीं देता। मतलब क्या है, उसका और एक शरीर दिया जाएगा उसको, क्या शरीर, क्या आध्यात्मिक शरीर दिया जाएगा उसको, भौतिक शरीर दिया जाएगा उसको। क्यों, कारण क्या है, इच्छा है लेकिन पूर्ति के लिए बुढ़ा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए उसको एक भौतिक शरीर दिया जाएगा। इसलिए लोग जन्म मृत्यु को बार बार काटते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं तुम अगर हरिनाम जपोगे, शास्त्र के विधिविधान को पालन करोगे, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये भौतिक इच्छाएं घटेंगे। प्रैक्टिकल प्रूफ हम दे सकते हैं। ध्रुव महाराज एक भौतिक इच्छा लेकर जंगल गए थे, आप सबको मालूम है ना, वो क्या इच्छा थी, उनको तो इच्छा थी धृतराष्ट्र से भी बड़ा इच्छा थी उनकी, धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि ये सारे भूमि हमारा हो जाए, उनकी इच्छा थी कि हमको ब्रह्मलोक जो है सत्यलोक उससे भी बढ़कर एक राज्य चाहिए, किसकी इच्छा थी, हाँ। लेकिन भगवान विष्णु के नाम लिया उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो नाम ले लेकर चित्त शुद्ध हो गया, मल मिट गया, और विष्णु के दर्शन जब प्राप्त हुआ, उन्होंने बोला विष्णु को, काचम चिन्वन अभी दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि, भरम नहीं आचे, हे भगवान विष्णु आप तो दिव्य रत्न है, जंगल में मैं आया कांच के टुकड़ों को ढूंढ कर, लेकिन जंगल में कांच का टुकड़ा ढूंढ करने के लिए आया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ मुझे, डायमंड प्राप्त हो गया हा? तो हमको दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, डायमंड क्या है, कांच का टुकड़ा क्या है। आप लोग जानते हैं नीरव मोदी हा? पढ़ा आपने, वो क्या करता है, कांच का बनाता है कुछ और बोलता है कि डायमंड है, चीटिंग। तो इसलिए आपको दोनों के बीच में फर्क मालूम होना चाहिए, कांच का टुकड़ा क्या है, भौतिक प्राप्ति, और एक्चुअल डायमंड क्या है, भगवत प्राप्ति है, विष्णु की प्राप्ति। तो उनको जब विष्णु की प्राप्ति हुई तो भौतिक पदार्थ के ऊपर जो आसक्ति था वो छूट गया उसको, ध्रुव महाराज उठ गया ऊपर, बोला कि स्वामी वरम नहीं आचे, अभी वरदा नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोला वो। और ये ध्रुव का ही नहीं, आप देखेंगे सुदामा ब्राह्मण गया द्वारका में, लेकिन मांगा नहीं कुछ भगवान से, कुछ भी मांगा नहीं। तो फल वाली आती है भगवान के पास, फल देती है लेकिन मांगती नहीं कुछ है। आप देखेंगे कि शास्त्र में पढ़ते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त मांगने की इच्छा ही होता नहीं उनको, उनको लगता है कि जो भी भगवान ने दिया बस बहुत हो गया, ऐसे लगता है उनको। तो ये सही मार्ग है, शास्त्र को पालन करना, नाम जपना, और हमारे भौतिक इच्छाओं को एक एक करके उड़ा देना, शूट कर देना चाहिए, 20 के 20 सब उड़ा दो, जब चाहे हमारे हृदय खाली हो जाता है, कुछ भौतिक इच्छा नहीं है, तो तब भगवत भगवान के लिए भावनाएं उठेंगे हमारे हृदय में, अन्य विलासिता शून्यम है। तो उस समय क्या होता है, हमें भौतिक इच्छा भी मिट जाता है, मोक्ष की इच्छा भी मिट जाता है, तब भक्ति की इच्छा जागृत होते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की प्रेम चाहिए, मैं भगवान के धाम में जाकर नित्य निरंतर सेवा करूंगा करूंगी, ऐसे भावनाएं उठते हैं। तो वो भावना तब उठता है। तो इसलिए उस सद्भावना को हमें उठाना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फर्क क्या है, भौतिक प्राप्ति करना पुनः पुनः चर्विता चरवनाना। अमेरिका में देखेंगे एक एक्ट्रेस थी, उसने 27 बार शादी की, उसने डाइवर्स करके 27 टाइम्स और करके उसमें से एक ही व्यक्ति को 5 बार शादी करके छोड़ा उन्होंने, उसमें उसके अंदर भी ऐसे है। तो इस तरह वो लोग पार्टनर बदलते हैं, पार्टनर मतलब पुनः पुनः चरित्र, एक से ट्राई किया, ट्राई मारा अच्छा नहीं रहा, तो दूसरा तीसरा चौथा। आप बोलेंगे प्रभु जी भारत हम लोग इतना बार नहीं करेंगे, आप बोलेंगे भारत में कोई है, लेकिन भारत में भी आजकल ये चालू हो गया, क्या है घटस्फोट, एक व्यक्ति को घटस्फोट करते हैं, हो सकता है कि एक को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़कर रहे, लेकिन वो जमाना आएगा भारत में भी जब वो लोग 27 बार 30 बार 40 बार लोगों को बदलेंगे, पार्टनर बदलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पुनः पुनः चरविता चरवनाना, वही चीज है, बार 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 ट्राई करते रहना। लेकिन भौतिक वो लोग क्यों एक छोड़कर दूसरा ट्राई करते हैं, इसका मतलब है पहले में उनको सुख नहीं मिला, नहीं तो क्यों दूसरा ट्राई मार रहे हैं, क्यों तीसरा, क्यों चौथा, क्यों पांचवा। लेकिन ध्रुव महाराज को भगवान से सुख प्राप्त हुआ कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम नहीं आचे, सुख नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि विष्णु को छोड़कर वो ब्रह्मा के पास गए, नहीं तो किसी और के पास गए, क्योंकि जो मिल गया उनको इधर, अगर नहीं मिला तो हम बोल सकते हैं पुनः पुनः चरित्र चरवाना है कि नहीं। इसी तरह और एक भक्त यमुनाचार्य बता रहे हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दामनुद्यतरंतु मासीत तदवति बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। बताते हैं कि जब से मैं मुझे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं को सुनने की मौका मिली, मुझे वो सुनने के बाद इतना दिव्य भावनाएं मेरे हृदय में उठे कि इस दुनिया की स्त्री पुरुष के आकर्षण की जो बात है, वो बात अगर मेरे मन में उछा रहा था तो मेरे ओंट में थूकता हूँ, थू करके मैं थूक देता हूँ, इसे थूक पाते हैं, इसका मतलब है उनको ऊंचा रस भगवान के द्वारा प्राप्त हो रहा है उनको। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अगर वो लोग भक्ति कार्य में जुड़े हैं लेकिन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं लूटते हैं, तो वो लोग भक्ति में जुड़े हैं वो लोग ऊपर उठ जाएंगे और वो लोग भक्तिमय जीवन का आनंद अनुभव करेंगे। ये बताया जा रहा है इधर, शास्त्रों को फॉलो करना, पालन करना। तो अभी देखिए गीता में भगवान बताते हैं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि परतर्षभः। अगर कोई स्त्री पुरुष साथ में आकर विवाह करते हैं, वो विवाह को भगवान ने माना है कि वो भी धार्मिक है। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं गृहस्थ और गृह मेदी के बीच में क्या फर्क है, बोलते हैं अगर कोई पुरुष स्त्री को सजाता है, अच्छी तरह से सजाकर बच्चों को सजाता है और अच्छा घर बांधता है, बड़ा मोटर गाड़ी लेके आता है, टेलीविजन लेके आता है, अच्छा खाने की पदार्थ पिज्जा के लिए ऑर्डर करता है, घर में आता है, सब अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर खाता है, पीता है, सोता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, वो गृह मेदी बोलते हैं उसको है। लेकिन गृहस्थ का मतलब क्या है, पति पत्नी बच्चे सब मंदिर में भागते हैं और माला करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, घर को भी मंदिर बना देते हैं और रुचि है उनका भगवत भक्ति में, लेकिन साथ साथ संसार को भी चलाते हैं। तो ऐसे करने वालों को भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार में रुचि नहीं क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको भक्ति रुचि प्राप्त हो गया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन में अनेक पति पत्नी एकदम खूबसूरत हैं, उनका अच्छे मजबूत शरीर है, खूबसूरती है, लेकिन वो शारीरिक सुख में वो क्षणिक सुख जो है उसमें सुख नहीं ढूंढते, वो तिलक पान कर, कंठी माला पान कर, माला लेकर भगवान की सेवा में सुख ढूंढते हैं, वैकुंठवासी ऐसे ही रहते हैं वैकुंठ में। तो इधर बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण चीज आज के सत्र में ये शास्त्रों के जो दिए हुए विधि विधान को गंभीरता से हमें लेना चाहिए। आप पढ़ेंगे भगवद गीता में 4.40 एक श्लोक है, अज्ञश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो नजुकम संशयात्मनः। तीन तरह के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। अज्ञश्चा का मतलब है जो जानवर जैसे जीने वाले द्विपाद पशु, वो मनुष्य, वो कभी शास्त्र को पालन नहीं करते, वो तो जानवर का शरीर भी मिल सकता है उनको। अश्रद्ध दाना का मतलब है जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, गीता का श्लोक भी याद भी करते हैं, कभी बोल भी पाते हैं श्लोकों को, लेकिन उन लोगों को उन शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। अश्रद्ध दाना का मतलब है कुछ चीज़ों के ऊपर विश्वास है, कुछ चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे ये पुराणों में अनेक चीज़ बताया गया है, ये क्या सत्य है, क्या क्या भगवान ने गोवर्धन को उठाया, क्या क्या भगवान ने आग को पिया, क्या, इस तरह उनको शंका होता है। वो शंका के कारण वो लोग शास्त्र का पालन नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग जानते हो ब्राह्मण एंड काबलर, ब्राह्मण और मोची की कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं। ब्राह्मण को जब बोला गया कि भगवान ने वैकुंठ में क्या कर रहे थे, एक सुई के छिद्र के अंदर हाथी को चला रहे थे, वो ब्राह्मण ने क्या बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, सुई का ये छिद्र इतना छोटा है, हाथी इतना बड़ा है, अरे नारद जी लगता है कि तुम वैकुंठ कभी गए ही नहीं है। तब उसने पूछा मुझे कितना जन्म लगेगा वैकुंठ जाने के लिए। नारद मुनि बोले कि मैं क्या बोलूं, नारायण ने बोला कि तुमको करोड़ों जन्म लगेगा। तब नारद समझ गए, क्योंकि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसको बार बार जन्म काटना पड़ेगा। लेकिन मोची को जब बोला उन्होंने, मोची ने पूछा क्या भगवान ने क्या बोला, मैं तो अभी मोची का शरीर प्राप्त किया है, मुझे भक्तों का संग मिलेगा, क्या भगवत सान्निध्यता प्राप्त होगा क्या। तो नारद ने बोला देखो तुम इसी जन्म में भगवत धाम लौट जाओगे, ऐसे विष्णु ने बोला, एकदम खुश हो गया, नाचने लगा वो। तब नारद ने पूछा उसको, उन्होंने पूछा नारद को क्या कर रहे थे भगवान विष्णु, थोड़ा उनके बारे में कुछ कथा बताइए। तो उन्होंने बोला कि भगवान हाथी को डाल रहे थे छिद्र के अंदर, सुई के छिद्र के अंदर। वो बोला वाह भगवान क्यों नहीं कर सकते, कितने अद्भुत चीजें करते हैं भगवान। तब नारद ने बोला अरे तुमको विश्वास है क्या कि भगवान ये कर रहे थे। वो बोला क्यों नहीं, ये बरगद के पेड़ के नीचे कितने सैकड़ों बीज गिरते हैं, एक एक बीज के अंदर भगवान ने एक एक बरगद का पेड़ डाला है। तो उनको ये सुई के छिद्र के अंदर हाथी चलाना क्या मुश्किल बात है। तब नारद समझ गए कि ये अंगूठा छाप है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। इसलिए हमारे पढ़ाई का नतीजा निकलना चाहिए श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं प्राप्त हुई कुछ काम का नहीं, सब कुछ बेकार है। श्रम ये वही केवलम, ये बात समझते हैं हम। तो इसलिए बोलते हैं अश्रद्ध धाना का मतलब है श्रद्धा जिनके अंदर नहीं है। इसलिए बड़े पंडित होकर हम अनेक श्लोक बोल सकते हैं, हजारों लोग हमारे प्रवचन में आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय में हमको श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा ना होने के कारण हम भगवान के निकट नहीं जा पाएंगे हम। तीसरा है संशयात्मा कौन है। संशयात्मा वो व्यक्ति है, वो शास्त्र जानता भी है, श्लोक कोट भी करता है, शास्त्र को मानता भी है वो, लेकिन उसको ये एक शंका है क्या भगवान निराकार है भगवान साकार है, ये समस्या है उसका है? ये तीसरा व्यक्ति संशयात्मा। भगवान बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो ऐसा हमने कहा, एक कहानी सुना, ये भी पुराणों का कहानी है, कि एक गुरुजी थे जिनके गुरुकुल में अनेक विद्यार्थी आते थे। तो एक लड़के को जंगल पार करके उस गुरुजी के पास जाना था है? लेकिन माता को बोला माँ मैं नहीं जाऊँगा, कल से बहुत डर हो रहा है मुझे, जंगल में शेर बाघ का आवाज वगैरह आता है। लेकिन माता ने बोला ये बच्चे चिंता मत करो, इस दुनिया में डरने की कुछ बात नहीं है, हमेशा तुम्हारे बड़ा भाई तुमको देख रहा है, तुम्हारी रक्षा करेगा। वो पूछा कि बड़ा भाई कौन है, हमने सुना नहीं है कभी है? तो माता ने बोला तुम्हारा बड़ा भाई गोपाल है। तो गोपाल की वर्णन किया, उन्होंने उसके घुंघराले बाल होते हैं, वो मोर पंख पहनता है, नीले रंग वाला है, पीतांबर पहनता है, हमेशा मुरली बजाता है। माँ ने उनके वर्णन किया, क्योंकि उनकी माँ जो थी शुद्ध भक्त थी कृष्ण के, हैं उन्होंने वर्णन किया। तो उसको सुनकर ये बच्चे को बहुत आनंद आया, बोला कि ठीक है मैंने तो देखा नहीं अभी तक उसको। माँ ने बोला ठीक है जब भी तुम्हें चिंता हो बुलाओ आ जाएगा वो। तो माँ के ऊपर विश्वास थी बच्चे को। तो बच्चा जंगल जाते समय एक दिन सर्प को देखा सड़क में पार करते हुए, चिल्लाए गोपाल के नाम है, तुरंत गोपाल आ गए। गोपाल आते ही सर्प अप्रकट हो गया उधर से है। तो गोपाल भगवान कृष्ण, गोपाल कृष्ण उनके हाथ पकड़कर वो जंगल की सीमा तक लेके गए, उनको छोड़ दिया। उनको इस तरह कभी कभी बुलाता था, वो आता भी आते भी थे। लेकिन एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सब विद्यार्थी गुरु को अलग अलग पदार्थ लेके आने वाले थे अपने घर से। ये लड़के की माँ तो उनको बुखार था, कुछ कर नहीं पाई घर में। जंगल में जाते समय लड़के ने सोचा कि ठीक है, हमारे गोपाल को कुछ मांग लेते हैं। गोपाल को पुकारा, पुकारते ही गोपाल पूछे बिना दे दिया उसके हाथ में एक वाटी। वाटी में परमाणा नाम का एक स्वीटरेस जैसे होता है, रबड़ी रबड़ी जैसे होता है, वो दिया उनको। मुनि कुमार को बोला, मुनि कुमार ये लेके जाओ, मुझे मालूम है कि तुमने क्यों पुकारा मुझे। देखिये, ये भगवान के संबंध में बताया गया भागवत में, अगर आप भगवान को पुकारेंगे आपको बोलना नहीं पड़ता क्या चाहिए। सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थितो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निजपाद पल्लवम। ऐसे बताया गया कि भगवान जो होते हैं, भक्तों को भी भौतिक चीजों को प्रदान करते हैं भगवान, लेकिन उनकी भौतिक चीज प्रदान करने में और देवता लोग प्रदान करने में बड़ा फर्क है। अगर देवता लोग आपको भौतिक चीजें प्रदान करेंगे ना, उन भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके आपको खुजली लग जाएगा, आपको और मांगने की इच्छा हो जाएगा, और दो और दो और दो करके, जैसे भस्मासुर रावण इत्यादि लोगों को हुआ। लेकिन भगवान के पास अगर कोई भौतिक चीज प्राप्त करता है भगवान के हाथ से, वो प्राप्त करके आप तृप्त हो जाओगे और वापस नहीं मांगोगे, साथ साथ और एक लाभ प्राप्त होगा आपको, भगवान की निज पाद पल्लव, भगवान के श्री चरणों में प्रेम जग जाएगा आपको। वो प्रेम जगने के कारण भौतिक चीज को आप बाजू में रख दोगे, भगवान के साथ जुड़ जाओगे आप सेवा में, ऐसे बताया गया है भागवत में। ऐसे तो भगवान आकर दिए, उसको परमाणा दिया, उसको लेके गया। तो जब गुरुजी के पास लेके गया, गुरु ने देखा कि सब लोग बड़े बड़े बर्तन में लेके आए हैं, लेकिन ये छोटा परमाणा लेके आया छोटा वाटी में। तो तब उन्होंने एक बर्तन में डाला, बर्तन पूरा भर गया। कैसे इतना छोटा वाटी से इतना बड़ा बर्तन भर गया, उनका आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े बर्तन में डाला, पूरा पूरा भर गया। तो सोचा उन्होंने कुछ तो चमत्कार है। वो लड़के को बुलाया, ए बताओ किधर से लेके आए। तो बोला, इस तरह मेरे बड़े भाई गोपाल ने दिया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कौन है गोपाल, उन्होंने वर्णन किया। तो टीचर ने शास्त्र में पढ़ा था कि भगवान वासुदेव ही गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, लेकिन उनको विश्वास नहीं बैठ रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या परम सत्य ऐसे एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, तो वो तो निराकार होना चाहिए, क्योंकि निराकार होने से क्या होता है, सब एरिया में कंट्रोल रहेगा उनका। एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे भगवान, उनका वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उनको मालूम नहीं, नहीं तक। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं दिल्ली के इसमें पार्लियामेंट में, लेकिन सारे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं है? इस तरह भगवान का भी कंट्रोल, एक देश स्थितस्थ आग्ने ज्योत्सना विस्तरणीयता ऐसे बोला गया। जैसे एक एक दिया को कमरे में रखो, सारे अंधकार को मिटा देता है वो, क्योंकि उसका ज्योत्सना उसका रोशनी फैलता है सारे कमरे में। ऐसे भगवान अपने शक्तियों के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को संभालते हैं, लेकिन वो निराकार गुरु था वो। तो कृष्ण की बात सुनकर उसको आश्चर्य हुआ, अच्छा तुम इसको मिलते हो क्या, क्या तुम इसको देखते हो क्या, अगर तुम्हारे साथ बात करता है क्या, ऐसे पूछ रहा था वो। वो लड़का बोला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल रहा था। तो गुरु जी को इच्छा हुआ, अरे भाई से अगर भगवान होते इसी रूप में जैसे कुंजी बिहारी के रूप में है, मैं भी देख लो है, अगर अगर एक बार देख लूंगा तो हमारा विश्वास बैठ जाएगा, परम सत्य का निराकार है साकार है, उनको शंका था। तो लड़के को बोला, ठीक है चलो आज हम भी देखना चाहते हैं। उनको साथ जंगल में गए। तो लड़के को बोला कि तुम उनको पुकारो, मैं इतने में जाड़ में मैं छुपा रहूंगा पीछे। वो बोला, सर आपको गुरुजी आपको उधर छुपा छुपने की जरूरत नहीं, आ जाइए, मैं तो ऐसे ही बुलाता हूँ आ जाते हैं। नहीं 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 तुमको कुछ मालूम नहीं है, मैं थोड़ा छुप जाता हूँ, तुम उनसे बात करो, हम ऐसे अंदर से देखेंगे जाड़ से वो कैसे दिखते हैं कैसे बात करते हैं, ऐसे बोला उसने। तो इसके बाद इसने बुलाया, गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल
Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala
तो उस दिन ये लड़का बार बार नाम गा रहा था पुकार रहा था लेकिन भगवान आ नहीं रहे थे। ये लड़के के आंखों में आंसू बहने लगे। हे गोपाल भैया क्यों नहीं आते आप, कितने बहुत बार आए हो आप पहले, अभी मेरे गुरुजी देखना चाहते हैं आप आते नहीं। तब एक आकाशवाणी सुनाई दिया, गुरुजी ने भी सुना लड़के ने भी सुना। वो गोपाल ने बोला हे मुनि कुमार मैं जब भी तुम बुलाते थे मैं आता था क्योंकि तुम्हारे माँ शुद्ध भक्त थी मेरी, क्योंकि उसकी खुशी के लिए मैं तुमको बचाने के लिए मैं आता था, लेकिन अब तुम ऐसे परिस्थिति में मुझे बुला रहे हो जिधर जो व्यक्ति सोचता कि मैं निराकार हूँ, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है उसको, उसके सामने मैं कभी नहीं आता, लेकिन उसके सामने तुम मुझे बुला रहे हो। मुझे मालूम है कि वो ही चुप कर देख रहा है वो भी, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ इस क्षण में, इसलिए कभी और तुम पुकारो मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं आ सकता हूँ। ऐसे बोलकर आकाशवाणी बंद हो गया। तो तब गुरुजी वो जाड़ से वापस लौट आए, तुरंत वो विद्यार्थी को आलिंगन कर लिया, बोला कि अरे लड़के तुम बड़ा भाग्यशाली हो, जिस भगवान को मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम देख पाए, कम से कम मुझे उनकी आकाशवाणी सुनाई दिया। आज मेरे मन में जो प्रश्न था परम सती के बारे में, क्या वो निराकार है साकार है, वो मिट गया। जरूर भगवान सुंदर स्वरूप वाले हैं जैसे तुमने बताया कृष्ण, तो आज से मैं वैष्णव बन जाऊंगा। तो वैष्णव तिलक पहनने लगे हो, वैष्णव तिलक पहनकर माला ले लिया इस्कॉन से, तो माला हरे कृष्ण करने लगे वो उस दिन से। तो कुछ दस सालों के बाद देखा होगा उन्होंने कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति करके। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, संशयात्मा का मतलब ऐसे लोग जो संशय करते हैं भगवान के ऊपर। तो शास्त्र पढ़कर हमें अज्ञा भी नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा दान भी नहीं होना चाहिए, संशयात्मा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दृढ़ भक्ति होना चाहिए, ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। बाकी तात्पर्य जो है कल जो भी भक्त बताया बोलेंगे वो बताएंगे उसके ऊपर। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।